Badram no piva tayamanaha om shanti 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 Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaha Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Yomavadvyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Om Shanti 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 Shivaya Namaha Om Shivaya Namaha Om Shivaya Namaha Om Namaha Shivaya Shivaya Namaha Om Shivaya Namaha Om Shivaya Namaha Om Namaha Shivaya Haraya Namaha Om Haraya Namaha Om Haraya Namaha Om Namaha Shivaya Haraya Namaha Om Haraya Namaha Om Haraya Namaha Om Namaha Shivaya सच्चिदानंद भगवान की तत्व जिज्ञासु सज्जनों श्रीमद् भगवद् गीता के आत्मसंयम योग नामक छठे अध्याय के 37 से 45 श्लोक पर्यंत योग भ्रष्ट की गति के विषय में कृष्णार्जुन का जो संवाद है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि योग भ्रष्ट का इहलोक में और परलोक में भी विनाश नहीं होता है। क्योंकि वो शास्त्र विहित कारी है। शास्त्र विहित कारी का भी कभी नाश नहीं होता है, तो फिर ये तो सर्वोत्कृष्ट है। निधिध्यासन कोटि तक पहुंचा हुआ है, उसकी दुर्गति न हो उसमें तो कहना ही क्या। अतः भगवान ने योग भ्रष्ट के दो विभाग करके उत्तर दिया। योग मार्ग में प्रवृत्त सर्वकर्म सन्यासी वेदांत का श्रवणादि साधन करते हुए बीच में ही जो म्रियमाण है, अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, उसमें जो मंद वैराग्य वाला है और तीव्र वैराग्य वाला है, दोनों के लिए अलग अलग गति बताई। जो मंद वैराग्य है, कहीं न कहीं अंतकरण में संसार के प्रति सुखाभिलाषा होने के कारण वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक की प्राप्ति में जो कारणभूत संन्यास, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्म विचार ये सब विद्यमान है, अतः वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। और ब्रह्मलोक में वह कई एक संवत्सर तक वास करके पुनः वो योग भ्रष्ट शुचि और श्रीमान के घर में, यानी कि महाराजा चक्रवर्ती के घर में उसका पुनः मनुष्य जन्म होगा। और जो तीव्र वैराग्यवान है किंतु अल्पायु के कारण जिसका शरीर छूट गया, ऐसा जो योग भ्रष्ट है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त न करके, क्योंकि वो ब्रह्मलोक विषयिणी भोग वासना उसके अंतकरण में है ही नहीं, क्योंकि वो तो तीव्र वैराग्यवान है, इसलिए उनका तो सीधे ही जो धीमान और शुचि जो योगी है उसके घर में पुनः जन्म होगा। उसका ब्रह्म विद्यावान जो गृहस्थी है उसके घर में उसका जन्म होगा। और फिर इन दोनों प्रकार के जन्म को भगवान ने दुर्लभ बताया। एक को दुर्लभ बताया और दूसरे को दुर्लभतर बताया। महाराज चक्रवर्ती के घर में जन्म वो दुर्लभ, और योगी के घर में, धीमान योगी के घर में जन्म उससे भी दुर्लभ। उसके बाद फिर यहां तक तो हम लोगों ने विचार कर लिया, और फिर 43वें श्लोक का भी हमने विचार कर लिया था। उसमें भगवान ने दुर्लभता में कारण बताया कि उसमें दुर्लभता क्या है, तो भगवान ने कहा कि वो योग भ्रष्ट जिसका जन्म महाराज चक्रवर्ती के घर में हुआ है और धीमान योगी के घर में हुआ है, वो दोनों पुनः जन्म प्राप्त करने के बाद वो वहां बैठे नहीं रहेंगे, किंतु पिछले जन्म में उनकी साधना जहां पर छूट गई थी उससे आगे के लिए वो प्रयत्न करेंगे। फिर तत्र यानी दोनों प्रकार के जन्म में पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। और पौर्वदेहिक जो है किया गया साधन है वो समाप्त नहीं हुआ, उनके संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि बीच में कहीं एक जन्म यदि बीत भी जाए तब भी वो पूर्व जन्म में उन्होंने शरीर छूटने से पहले तक जहां तक उन्होंने साधन किया था वो साधन खत्म नहीं होता। जैसे उसको कहीं ऐसा योग मिल जाता है तो वहां से उसकी आगे की साधना शुरू हो जाती है। इसलिए कहा कि पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोग लभते। बुद्धि से अभिप्राय है ब्रह्मात्म के विषयिणी बुद्धि, और संयोग का अर्थ है साधन। ब्रह्मात्मिक विषयिणी बुद्धि में जो उनका साधन जो छूट गया था, जहां से बाकी था, वो जो है उनको लभते यानी वो प्राप्त करता है। और ठीक है, प्राप्त हो गया लेकिन वो प्रयत्न न करे तो कहते हैं इतना ही नहीं, न केवलम लभते एव किंतु ततः भूयः संसिद्धो यतते च। ततः यानी उससे आगे जो साधन छूट गया था, जो नहीं कर पाया था अल्पायु के कारण, वो जो साधन है उससे आगे की जो साधना है, भूयः यानी उससे अधिक जो अग्रिम भूमिका जो बाकी है, उस भूमिका के लिए, वो उस भूमिका की संसिद्धि के लिए, या संसिद्धि मोक्ष, जिस भूमिका तक मोक्ष होता है उस भूमिका को वो यतते उसके लिए प्रयत्न करेगा। और इसके विषय में हम लोगों ने कल योग वाशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी और राम के संवाद में जो उद्धृत है योग की सात भूमिका, उसका उल्लेख किया था। प्रथम द्वितीय और तृतीय भूमिका में ही भ्रष्ट होने की आपत्ति बनी रहती है, चतुर्थ भूमिका तो तत्व साक्षात्कार की है इसलिए उसमें तो भ्रष्ट होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब मानो यदि वो प्रथम भूमिका में वो अल्पायु के कारण उसका शरीर छूट गया तो फिर ये महाराजा चक्रवर्ती के घर में चाहे जन्म हो, चाहे धीमान योगी के घर में जन्म हो, वहां पर वो प्रथम भूमिका से फिर आगे की दूसरी भूमिका के लिए वो प्रयत्न करेगा। और यदि दूसरी भूमिका में ही उनका अल्पायु के कारण शरीर छूट गया था तो फिर ये पुनर्जन्म में वो आगे की तृतीय भूमिका के लिए ये प्रयत्न करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ततः भूयः संसिद्धौ यतते, वहां वो बैठा नहीं रहेगा, जो बाकी है उसके लिए वो प्रयत्न करेगा। यहां तक का विचार हो गया। अब 45 श्लोक पर्यंत का हम लोगों ने चयन किया, अब ये दो श्लोक जो है उसका विचार करते हैं। देखो उसमें सबसे पहले 44वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखो 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान ने वो उत्तर दिया। मानो अर्जुन ऐसा प्रश्न करे, भगवान को कहे कि भगवान आपने मंद वैराग्यवान का जन्म तो महाराज चक्रवर्ती के घर में उनका जन्म बताया, और तीव्र वैराग्यमान योग भ्रष्ट का जन्म आपने धीमान योगी के घर में बताया, तो उन दोनों के बारे में अर्जुन के मन में यह संदेह हुआ कि जो महाराज चक्रवर्ती के घर में जिसका जन्म हुआ है, तो महाराज चक्रवर्ती के घर में कोई विषय भोग कम होंगे क्या? बहुत प्रकार के विषय भोग वहां पर उसको उपलब्ध है। और सबसे बड़ा व्यवधान क्या है? भोग विषय तो व्यवधान है। तो महाराजा चक्रवर्ती के घर में जिस योग भ्रष्ट का जन्म हुआ है, उनके वहां तो भोग का बहुत बड़ा व्यवधान रहेगा। भोग से वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, वो तो आगे की साधना कैसे करेगा वो। और वो व्यवधान से उत्पन्न जो विषय भोग की वासना, वो एतत्कालीन है। और जो साधना के संस्कार है वो पौर्वदेहिक है। बलवान कौन होंगे बताओ? एतत्कालीन भोग वासना प्रबल होगी या पौर्वदेहिक वासना प्रबल होगी, साधन की वासना प्रबल होगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता? एतत् जन्म में वो महाराजा चक्रवर्ती के घर में जन्म हुआ है, भोग वासना भोग कर रहा, विविध प्रकार के भोग है। देखिए, वासना की जहां तक बात है, वासना से मैंने वो उसकी इच्छा, सामान्य तौर पर यदि कंपेयर किया जाए तो प्रत्यक्ष जो है भोग वो प्रबल होता है, प्रत्यक्ष भोग प्रबल होता है, क्योंकि महाराजा चक्रवर्ती के घर में उसको कई एक प्रकार की बाधा रहेगी। उसके मन में रहेगा कि मैं तो राजकुमार हूं, महाराजा चक्रवर्ती का पुत्र हूं, ऐसे वैसे तो हूं नहीं। तो दो चाहे कहीं जगह वो भी जा नहीं सकता, उसके लिए जो पूरी व्यवस्था चाहिए, जैसे सामान्य व्यक्ति जो है कहीं भी चला जाए कुछ भी करे, लेकिन महाराजा चक्रवर्ती के पुत्र है उसके लिए तो कई एक जो है फिर मर्यादाएं रहती है, तो उससे वो बाहर न निकल पाए, संन्यास ग्रहण न कर पाए, कहे कि मेरे को संन्यास ग्रहण करना है, तो चारों ओर से उनके जो है सब लोग घेर लेंगे कि तुम्हें यहां क्या कमी है कि तो तुम संन्यास ग्रहण करोगे, उसको दबा देंगे। उनके पिता महाराज चक्रवर्ती कहेंगे तुम तो राज करो, संन्यास क्यों लोगे? कदाचित उसके मन में वो संन्यास की भावना आ भी जाए पूर्व पौर्वदेहिक संस्कार की प्रबलता से, लेकिन वर्तमान कालिक जो भोग है वो प्रबल होने से उसको दबा दे। तो देखिए, बात यह है कि ज्ञान की जो वासना है वो अल्पकालिक होते हुए भी, भोग की वासना दीर्घकालिक होते हुए भी वो अवस्तुसत है। ज्ञान की वासना अल्पकालिक होते हुए भी वो वस्तुसत है। तो वस्तुसत विषयिणी जो अभिलाषा वासना है वो अवस्तुसत विषय भोग की वासना की अपेक्षा अनंत गुनी प्रबल होती है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान जिसका जन्म महाराज चक्रवर्ती के घर में हुआ है, वो फिर आगे के लिए प्रयत्न क्यों करेगा? वो वहां भी फंस सकता है। योगी के घर में जिसका जन्म हुआ है, धीमान योगी के घर में, तो उसको तो वहां कोई बाधाएं है नहीं, तो वो जो है संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करेगा तो वो धीमान योगी कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, तुम संन्यास ग्रहण कर लो, उसके पिता कहेंगे क्योंकि वो भी खुद जो है ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, इसलिए वो उसके समर्थन करेंगे। लेकिन महाराजा चक्रवर्ती के घर में जिसका जन्म हुआ है, वो महाराजा चक्रवर्ती उसको ये थोड़ा कहेंगे कि तुम संन्यास ले लो, राजकारभार संभालो, तो वहां उनको बाधाएं हैं। तो अर्जुन कहते हैं भगवान वो फिर आगे की साधना कैसे करेगा, उसके वहां तो बहुत सारी बाधाएं खड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अर्जुन की शंका का उत्तर 44वें श्लोक में दिया, देखो उसका हम लोग उच्चारण करते हैं। पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ठीक है, उन्होंने जो साधना की थी वो जन्म और वर्तमान कालिक जन्म जो हुआ महाराजा चक्रवर्ती के घर में, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला हो गया, अति चीर व्यवहित जन्म उपचित होने पर भी भगवान कहते हैं तेन एव पूर्वाभ्यासेन अवशोपि ह्रियते, कहते तेन एव जिस जन्म में उन्होंने साधना की थी और वो साधना छूट गई थी, उस जन्म में उन्होंने जो ज्ञान के संस्कार अर्जित किए थे, श्रवणादि मनन निदिध्यासन तक साधना वो वहां वो कर चुके थे और वो संस्कार अर्जित किए थे, अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, उसके बाद ब्रह्मलोक में जो है अनंत काल तक वो ब्रह्मा जी के कई एक अक्षुण संवत्सर तक उन्होंने वहां भोग भोगा, उसके बाद महाराजा चक्रवर्ती के घर में जन्म, वो जो समय है वो इतना दीर्घ काल उसके बीच में बीत गया, फिर भी भगवान कहते हैं तेन एव वही जो है पूर्व जन्म में उन्होंने जो साधना की थी उसका जो अभ्यास है संस्कार है वो समाप्त नहीं हुआ। तेन एव पूर्वाभ्यास है ना, वो पूर्व में किए गए वो अभ्यास से, यानी प्राग अर्जित जो ज्ञान संस्कार है, जिस समय उसका अल्पायु के कारण शरीर छूट गया था, वो संस्कार से इस समय वो महाराजा चक्रवर्ती के घर में चाहे जन्म है, कई एक भोग की बाधाएं है, फिर भी भगवान कहते हैं अवशोपि ह्रियते हो, अवशोपि कोई बात नहीं, इस समय वो भोग में रत है, मोक्ष साधन महाराजा चक्रवर्ती के घर में जन्म हुआ है, अभी नहीं कर रहा है मोक्ष का साधन, अभी वो नहीं कर रहा है, भोग भोग रहा है, अप्रयतमान है, तब भी ह्रियते हो पौर्व पूर्वाभ्यास उसको ह्रियते यानी कि अपने वश में कर लेते हैं, प्राग अर्जित जो ज्ञान संस्कार है वो भोग में रत होते हुए भी वो पौर्वदेहिक जो संस्कार है उसको ह्रियते उसका हरण कर लेते हैं, हरण करने यानी अपने वश में कर लेते हैं। और होता क्या है कि जैसे राजा भर्तृहरि देख लो, इतने बड़े राजा होते हुए भी अकस्मात ही राजकारभार सब छोड़ दिया, ऐसा क्यों? प्राग अर्जित ज्ञान के संस्कार इतने प्रबल है कि वर्तमान कालिक जो भोग के संस्कार को भी वो दबा देते हैं, इसलिए और बुद्ध के बारे में भी यही कहा जाता है, वह भी कपिल वस्तु में उसका जहां जन्म हुआ था अकस्मात ही वो जो है सब छोड़ छाड़ करके निकल गए। तो अकस्मात ही जो है भोग वासना से उसका व्युत्थान हो जाता है और मोक्ष के साधन के प्रति वो उन्मुख, वो संस्कार के कारण वो हो जाते हैं, क्योंकि भोग विषयणी वासना यद्यपि प्रबल है वो भी कोई कमजोर नहीं है, किंतु ज्ञान वासना अल्पकालिक होते हुए भी और भोग वासना दीर्घकालिक होते हुए भी ज्ञान की वासना वस्तु विषयक है और वस्तु विषयक होने से अवस्तु विषयक भोग वासना से वो कहीं एक गुणी प्रबल होती है ज्ञान की वासना। इसलिए भोग की वासना दब जाती है और ज्ञान की वासना जो है प्रकट हो जाती है, तो फिर वो भोग से उनका वैराग्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानो खुद ही कह रहे हो यहां पर, अर्जुन तुम ही देखो और दूर कहां जाने की जरूरत है, तुम्हारे बारे में ये घटा है यहां इस समय। भगवान ने कहा कि तुम यहां क्या करने के लिए आए हो, युद्ध करने के लिए या ज्ञान लेने के लिए, बताओ आप लोग ही बताओ, अर्जुन वगैरह वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या करने के लिए गए थे, युद्ध करने के लिए गए थे। और जाते समय अर्जुन के मन में यह था कि मैं वहां जाकर के ज्ञान लूंगा, बिल्कुल नहीं। युद्ध करने के लिए गए थे, अब युद्ध टला नहीं, अवश्य कर्तव्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रयत्न तो बहुत किया युद्ध को टालने के लिए, जो भी कूटनीति की जाती है वो सब भगवान कर चुके हैं, लेकिन जब पूर्व पक्ष की ओर से कोई समाधान नहीं निकला तब जाके भगवान ने कहा कि अब तो युद्ध करना ही होगा, अब चलो कुरुक्षेत्र में युद्ध वहीं होगा, वो धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है वहां युद्ध होगा तो धर्म की स्थापना ही होगी। गए सब, आमने सामने खड़े हैं, शंख नादादि भेरी नादादि हो गए और अकस्मात अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया और कहा कि भगवान सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतक, भगवान आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए है। भगवान ले गए, अच्छा देख लो, पश्य एतान, देख लो तुम कौन कौन है, तुम्हारे तुम जिसको संबंधी मानते हो वो तुम्हारे पक्ष में है या दुर्योधन के पक्ष में, देख लो। अर्जुन ने देखा कि दोनों और सेना, दोनों और की सेना को देखा मोह से ग्रस्त हो गया कि अरे ये तो अपनी ओर देखा तो कहा कि इसमें तो जो है मेरे सब संबंधी है, पूर्व पक्ष की सेना को देखा कहा कि अरे सामने तो पितामह है, गुरु है, सब किसके साथ में युद्ध करो, मोह से ग्रस्त हो गया, हथियार डाल दिए, कहा कि न योत्स्य इति गोविंदा, न योत्स्य इति तुष्णिम बबुआ, चुप होकर के खड़ा हो गया, भगवान को कह दिया। और अर्जुन ने कहा कि एता न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, क्योंकि भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम नहीं लड़ोगे तो वो तुमको मार देंगे, तुम क्या करोगे। तो अर्जुन ने तो यहां तक कह दिया कोई बात नहीं, धृतराष्ट्र रणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत, कहा धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे को मार दे, मेरा तो क्षेम ही होगा। भगवान ने कहा कि तुम मूर्ख, इससे तुम्हारा कोई क्षेम होने वाला नहीं है। तुम युद्ध करो, युद्ध से तुम्हारा श्रेय संपादन हो सकता है। इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। ये बिल्कुल अकस्मात हुआ है, ये कोई पूर्व संपादित ही ये कार्य नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ही देखो, तुम युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए हो और ज्ञान के लिए तुम बिल्कुल प्रयत्नशील नहीं थे, फिर भी पूर्व संस्कार तुम्हारा जो है प्रबल था, इसलिए पूर्व संस्कार की प्रबलता के कारण अकस्मात ये रणभूमि के अंदर तुम ज्ञान के प्रति अभिमुख हो गए हो। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में भी इस बात को कहा कि यदि कोई निष्काम कर्मानुष्ठान करता है और वो थोड़ा ही हुआ है, समझ लो, तो भी भगवान ने कहा कि वो कभी खत्म नहीं होता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहा गया निष्काम कर्म में कभी अभिक्रम का नाश नहीं होता और उसमें कोई प्रत्यवाय नहीं लगता है। उसका यदि पूर्ण रूप से अनुष्ठान न हो सके, थोड़ा सा ही हो जाए, तब भी भगवान कहते हैं महतो भयात्रायते, महान भय ये जन्म और मृत्यु से और महान भय और कौन हो सकता है। उससे वो जो थोड़ा सा भी निष्काम कर्म का अनुष्ठान तार देता है, तो ये जो है अर्जुन ने जिस योग भ्रष्ट के विषय में आशंका की है, वो तो निष्काम कर्म के अनुष्ठान से और आगे की बात आगे बढ़ गया हुआ। निष्काम कर्म उसके बाद संन्यास, उसके बाद अंतरिक्ष श्रवणादि साधन करते हुए उसका तो शरीर छूटा था, तो उसके संस्कार तो वो उससे भी कई गुने प्रबल है। इसलिए अनेक जन्म, हजारों जन्म का व्यवधान होते हुए भी बीच में यदि चले गए, फिर भी ज्ञान का संस्कार जो है वो अपना कार्य करेगा ही, क्योंकि वो वस्तुसत है, वस्तु विषयक है। ज्ञान का संस्कार जो है वो वस्तु विषयक है और भोग का जो संस्कार है अवस्तु विषयक है। इसलिए वस्तु विषयक ज्ञान संस्कार प्रबल होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो अवश्य महाराजा चक्रवर्ती के घर में भी जन्म होने होते हुए भी वो अकस्मात ही वो ज्ञान की साधना आगे की वो शुरू करके मोक्ष तक का अनुष्ठान वो कर पाएगा। और भगवान ने इस प्रसंग से एक और भी बातें कह दी श्लोक के उत्तरार्ध में कि केवल योग भ्रष्ट के विषय में ही ये बात नहीं है। भगवान ने कहा योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्माति वर्तते, केवल निधिध्यासन कोटि में शरीर छूटा है और वो आगे की साधना के लिए प्रयत्न करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके, इतना ही नहीं, योगस्य जिज्ञासु, योग की जिसके मन में जिज्ञासा है। अभी योग का अर्थ यहां पर ब्रह्म, योगस्य जो है ना उसका अर्थ यहां पर ब्रह्म, और जिज्ञासु यानी कि ब्रह्म जिज्ञासु। कहते हैं कि ब्रह्म का जिज्ञासु होते हुए भी स शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब देखिये योग के जिज्ञासु को आप वेदांत के क्रमानुसार विचार करें, ब्रह्म जिज्ञासु, योग का अर्थ लेना है ब्रह्म यहां पर, तो ब्रह्म जिज्ञासा किसको हो सकती है? प्रथम भूमिका को जो प्राप्त है उसके विषय में ब्रह्म जिज्ञासा है। प्रथम भूमिका क्या है? शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका है और उसका स्वरूप है जो विवेक आदि चार साधन से संपन्न है वो जो है शुभेच्छा नामक प्रथम भूमि है। जिसमें ब्रह्म विषयिणी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अब जिज्ञासा, उसके बाद संन्यास होता है, उसके बाद फिर श्रवणादि साधन होते। तो कहते हैं कि यदि वो जिज्ञासु कोटि का भी यदि साधक है, यानी प्रथम भूमिका को ही जो जिन्होंने साधन रूप से संपादित किया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सह यानी वो भी शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म का वो अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म का अर्थ यहां पर है वेद, जिसका जिस ब्रह्म का स्वरूप शब्द है। देखो, वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग भगवान ने तृतीय अध्याय में भी किया। ब्रह्म का अर्थ वेद, और वेद का स्वरूप क्या है? शब्द ही तो स्वरूप है, उसमें कोई पुरुष तो है नहीं, शब्द ही उसका स्वरूप है। इसलिए शब्द ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो वेद, उस वेद का अतिक्रमण यानी वेद प्रतिपादित जो कर्म का अतिक्रमण यानी कर्म का संन्यास, उसके लिए भी भगवान ने कहा कि जो प्रथम भूमिका को प्राप्त है वो भी कर्म प्रतिपादक जो वेद है उसका अतिक्रमण करके, यानी कर्माधिकार का अतिक्रमण करके ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तो फिर ये योग भ्रष्ट जो है वो तो और निदिध्यासन कोटि में जाकर के उसका अल्पायु के कारण शरीर छूट गया था, और यही जो है साधना का प्रबल संस्कार के कारण महाराजा चक्रवर्ती के घर में भी उसका जन्म हुआ है, तब भी वो उनकी आगे की साधना शुरू हो जाती है, वो ज्ञान संस्कार समाप्त नहीं होते हैं। और ये योगस्य जिज्ञासु के बारे में भी भगवान ने कहा कि यदि मानव की प्रथम भूमिका में ही है योग की जिज्ञासा है, जिज्ञासा हुई और शरीर छूट गया, तब भी उनके ये एतद जन्मकालीन ज्ञान के संस्कार खत्म नहीं होते। वो चाहे बीच में 1000-2000 जन्म बीत जाए, तब भी वस्तु विषयक ज्ञान संस्कार कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए वो भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण यानी कर्म प्रतिपादक जो वेद है, यानी कर्म का अतिक्रमण यानी कर्माधिकार का अतिक्रमण यानी संन्यास यानी ज्ञान के योग्य जो अधिकार है, ज्ञान का अधिकारी टोटल ये ले लो कि वो भी ज्ञान का अधिकारी वो हो जाता है। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार यहां पर एक बात और स्पष्ट हो गई। अर्जुन ने तो तृतीय भूमिका को प्राप्त योग भ्रष्ट के विषय में शंका की थी, भगवान ने तो यहां ये कह दिया कि प्रथम भूमिका में भी जो जिसका शरीर छूट जाता है तब भी वो आगे उसकी साधना जो है पौरोदयिक शुरू हो जाती है। तो इस तरह से प्रथम भूमिका में भी जो मृत है वो भी जो है अनेक भोग वासना से व्यभीत, बहुत सारे जन्म बीच में व्यवधान रूप से हो जाए या अनेक प्रकार के और भी प्रतिबंधक आते हैं प्रमाद के कारण, और उसका जो है महाराज के कुल में जन्म होने पर भी वो जो योग भ्रष्ट है, प्रथम भूमिका में जो योग भ्रष्ट है वो भी पूर्व जन्म में जो उपचित ज्ञान संस्कार है उसके प्रबलता के कारण कर्माधिकार का अतिक्रमण करके वो भी ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तो फिर अर्जुन उसकी तो क्या कहना जो दूसरी और तीसरी भूमिका में जाकर के जो मृत है और वो भी ब्रह्मलोक के भोग के अंत होने पर महाराजा के कुल में जन्म होने पर वो वहां पर सब प्रकार के भोग होते हुए भी उस भोग का त्याग करके फिर जो है आगे की साधना शुरू करता है, तो उसके बारे में तो कहना ही क्या। वो बात भगवान 45वें श्लोक में कह रहे, देखो उसका उच्चारण करते हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परां गतिम्। भगवान कहते हैं कि प्रयत्नाद यतमानः योगी, प्रयत्नाद यानी जो है पूर्व जन्मों में कृत जो ज्ञान साधना है, उससे भी अधिक जो प्रयत्न यतमान है इस वर्तमान जन्म में, पूर्व में जो उन्होंने ज्ञान साधना की थी उससे अधिक वर्तमान जन्म में जो यतमान है, यानी अब आगे का जो प्रयत्न कर रहा है जो योगी, वो योगी पूर्व उपचित संस्कार वाला होकर के पूर्व जन्म में ज्ञान साधना के संस्कार वाला होकर के वो ही संस्कार के पुण्य के फल स्वरूप संशुद्ध किल्बिषः, किल्बिष जो उसके जो है छूट गए, किल्बिष से वो शुद्ध हो गए। किल्बिष कहते हैं कीचड़, अंतकरण के ऊपर जो है रहता है राग द्वेष आदि जो कीचड़, वो पूर्व उपचित संस्कार की प्रबलता से और प्रयत्न से जिसका छूट गया है, यानी अंतकरण जिसका शुद्ध हो गया है, तो वो जो है संशुद्ध किल्बिषः योगी अनेक जन्म संसिद्धः, अनेक जन्म के द्वारा जो संसिद्ध है, अनेक जन्म में थोड़ा थोड़ा जो है साधन उन्होंने किया है, वो जो साधन है वो सम्यक प्रकार से जब सिद्ध हो गए, संस्कार से संस्कार के अतिरेक से और वर्तमान कालिक को कुछ पुण्य के अतिरेक से वर्तमान में जो जन्म धारण किए हुए हैं उससे ततः याति पराम गति, ततः यानी उससे वो साधन परिपाक के अंत में पराम गतिम याति, वो जो है पराम गतिम, पराम गति कहते हैं, पराम का अर्थ है प्रकृष्टाम, जिससे अधिक और कोई गति, गति यानी मोक्ष स्थान नहीं है, ऐसी पराम गति का अर्थ है निर्विशेष मोक्ष, वो जो है गतिम प्राप्नोति, याति का अर्थ है प्राप्नोति, वो कर लेता है, उसकी साधना छूटती नहीं है। इसलिए वेदांत का जो सिद्धांत है उसका जो क्रम है, जैसे आदौ निष्काम कर्म निष्ठ, ततः अंतकरण शुद्धि, ततः शमदमादि साधन पुरस्सर सर्वकर्म संन्यास, ततः वेदांत वाक्य विचार सहिता भगवत भक्ति निष्ठा, ततः तत्वज्ञान निष्ठा, ततः त्रिगुणात्मिका अविद्या निवृत्त्या प्रारब्ध कर्म फल भोग पर्यंत जीवन मुक्ति, तद अंते च विदेह मुक्ति। ये जो क्रम है सज्जनों, वो कोई एक जन्म में संभव नहीं हो पाता कि कोई कहे कि ये सब एक जन्म में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये क्रम कंपलसरी है, किंतु हो सकता है कि वर्तमान जन्म में हम लोगों को लगे कि कोई बाल्यावस्था से ही जो है सब छोड़ छाड़ करके संन्यास ग्रहण करके जो वेदांत का श्रवण आदि साधन में तत्पर है, तो हमारे मन में संदेह हो जाता कि इन्होंने कहां कर्मानुष्ठान किया है। अंतकरण शुद्धि का कारण कर्मानुष्ठान इन्होंने तो किया नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर उसकी चित्त शुद्धि कैसे हुई। तो आचार्यों ने कहा कि चित्त शुद्धि यह जन्मनी जन्मांतर है, जन्मांतर में भी जो है उनकी पूर्व उपचित साधना का फल इस जन्म में मिलता। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धि भगवान ने कहा, अनेक जन्म से ये संसिद्ध होने पर जो है पराम गति की प्राप्ति होती है, कोई एक जन्म में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और देखिए, एक जन्म होता तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग, दो होते तो द्विवचन का, और दो से ज्यादा होने पर बहुवचन का प्रयोग है, या तो तीन जन्म में से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है तीन जन्म से। और यदि साधन क्रम मंद है, साधना मंद है, तो तीन से अधिक जन्म भी हो जाए। और ये बात भगवान ने जैसे कही है, इससे पूर्व में भगवान एक बात कह गए, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। साधन कर्म करने वाले भी बहुत है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि साधन क्रम मंद है तो प्रत्यक्ष भोग विषिणी वासना प्रबल हो जाती है, तो साधन क्रम छूट जाता। और कभी ऐसा होता है कि साधन क्रम बलवान है तो भोग वासना छूट जाती है। तो इसमें से इस तरह के बहुत सारे भेद हैं। इसलिए कोई ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही जन्म में हो जाए। इसलिए भगवान ने यहां पर बिल्कुल कहा कि अर्जुन, संस्कार के अतिरेक, पुण्य का अतिरेक, ये बहुत सारे कारण होते हैं, उससे साधन का परिपाक होता है, उस परिपाक के फल स्वरूप जो प्रकृष्ट मोक्ष रूपी गति को वो प्राप्त हो जाता है। इससे भगवान ने यह कहा कि योग भ्रष्ट का नाश नहीं होता है, किंतु वो उनकी साधना अनेक जन्म के अंतर में भी वो पूरी करता है और निर्विशेष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो ब्रह्मलोक में जाकर के भी वो पुनः यहां पर आकर के साधना उसकी पूरी करता है। इसलिए देखिए, प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि चातुर्य में भेद है। ये भेद का कारण है कि ये पहला जन्म नहीं है और अंतिम जन्म भी नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है तो अंतिम जन्म भी नहीं है, न जाने पहले कितने जन्म धारण किए और आगे न जाने कितने जन्म धारण करने होंगे। उन सभी जन्मों में सज्जनों, ये मनुष्य शरीर जो है वो ही एक ऐसा है कि जिसमें ये साधन किया जाता है। मनुष्य से इतर कोई पशुआदि या कीट आदि के शरीर में ये साधन नहीं होता है। इसलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त यदि किया है तो वेद जो है, हमारा वैदिक धर्म है, वो मनुष्य जन्म में जो मिली आयु है, कहते हैं उस आयु को पूरी तरह से धर्ममय और ब्रह्ममय बिताना चाहिए, भोगमय नहीं। भोग की प्राप्ति की जहां तक बात है तो मनुष्य से इतर जो भी 83,99,999 जन्मों में भोग मिलना ही है, भोग दुर्लभ नहीं है, योग दुर्लभ है। और वो योग की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही संभव है एकमात्र। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रयत्न करें और आगे की साधना हम करते रहे और निर्विशेष मोक्ष का भागीदार होवे, इसी प्रार्थना के साथ अर्जुन ने योग भ्रष्ट के विषय में जो की गई शंका और भगवान ने यहां 45 श्लोक पर्यंत जो दिए गए उत्तर का हम लोगों ने भगवान की परमानुकंपा से विचार किया। हम सबको ये जो है ज्ञान सत्संग जो है अपने जीवन में उपयोगी हो, यही प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।
नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। स्वामी जी की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी मोहनानंद जी का कार्यक्रम था, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा। हमने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ने कृपा करके हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। स्वामी जी बहुत ही सरल और सहज हैं। आत्मसंयम योग का स्वामी जी ने जो हमें ज्ञान दिया, हम सब साधक हैं, मुक्षु हैं, और इसी जन्म में कई जन्मों तक जन्मों का हमारा संस्कार है, तभी हम इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। हमें इसी तरह से साधना करनी है और आवागमन के इस बंधन से मुक्त होना है। मैं अधिक कुछ नहीं कहकर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल से स्वामी विष्णु वल्लभानंद जी का प्रवचन है, वो 28 तारीख से चलेगा। जय श्री कृष्ण।